आगे देखिएगा, अब इसी में आगे अल्लाह ताला वजाहत कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम पे जो इन्होंने इल्जाम लगा दिए हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ बिल्ला, या वो खुद इलाते, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। ईसा क्या, मेरा तो कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह ताला कोई दीन की दौलत दे और वो बाद में क्या कहे। और लिख ले इस आयत का टॉपिक, शख्सियत परस्ती के नुकसानात। अफसोस की बात है कि आज भी लोगों ने दीन की बातें बताने वालों को अल्लाह से और रसूल से, उसके हुक्म से आगे नहीं किया ना, तो उसके बराबर तो जरूर समझ लिया। इसी का तस्करा है आयत 79, मा कान अली बशरिन, किसी बशर को ये लायक ही नहीं, इट डजंट सूट हिम, ये तो किसी इंसान के शायाने शान नहीं। ये जो बशर लफ्ज है ना, ये इसम जिन्स होता है, इसकी ना वाहिद है, ना जमा है, ना मुजक्कर है, ना मुअन्नस है। और बशर कहते हैं इंसान को, हैवान के ऑपोजिट है, क्योंकि बशर कहते हैं स्किन को। आप देखिए कि स्किन के ऊपर ना रंग आते हैं, खुश हो तो रंग लाल हो जाता है, परेशान हो तो खौफ ज्यादा होने लगता है, खौफ आ जाए तो रंग उड़ने लगता है, सफेदी आती है, बीमार होते हैं तो पीला रंग होता है ना। जानवरों के जिस्म पे या तो खाल के ऊपर पर होते हैं या बाल होते हैं, तो इंसान की वो चीज समझ नहीं आती। तो बशरतन कहते हैं इंसान की जिल्द की ऊपर की सतह के, ठीक है। अल बशरू कहते हैं खाल को छीलना, जैसे जानवर को जिबा करने के बाद उसकी खाल ऊपर से छीली जाती है, या फिर उसके बालों को साफ कर देना। तो यहाँ बशर कहकर ओवरऑल ह्यूमन की बात है, यानी कोई बशर भी, चाहे वो इंसान है, चाहे बाद का कोई बुजुर्ग है, चाहे वली है, पैगंबर है, किसी ने आज तक जो उलमाए हक थे उन्होंने कभी ये नहीं किया। क्या युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुवा, यहाँ नोट कीजिएगा, तीन नेमतों का तस्करा है, आगे तीन सजाओं का भी जिक्र आना है और तीन नाफरमानियों का जिक्र भी आना है। क्या अल्लाह ने उसको किताब, हिकमत और नबुवत दी, यानी किसी को भी अल्लाह सुबहाना ताला ने अगर ये दौलत दी किताब की, आपको मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म यानी हिकमत दी, हम मांगते हैं अल्लाह से, और तीसरी चीज हमें नहीं मिल सकती क्योंकि वो खास थी, नबुवत, और नबुवत दी, ये तीन दौलतें दे दी, मुराद ये कि उसको दीन दे दिया। सुम्मा यकूल अलिन्नासी, फिर वो लोगों से कहने लगे, कूनू इबादल्ली मिन दूनिल्लाह, कि तुम मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह अकबर, असल में ये नसरानियों की तरफ इशारा है कि जिनकी तरफ अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जिनको किताब भी मिली, कौन सी, इंजील, हिकमत मिली, दुनियावी विजडम भी मिली, और तिब भी मिला, और नबुवत मिली, मौजजात मिले, तो क्या हजरत ईसा ने बाद में लोगों को ये कहा होगा कि कून इबादल ली, मेरे बंदे बन जाओ मुझे रब को या रब का बेटा को, ऐसा तो कभी उन्होंने किया नहीं, ना इसका इम्कान है। हाँ फिर नबी क्या कहते थे, अब अगले हिस्से में जवाब सुनिए, वलाकिन कूनू रब्बानीशीन, बल्कि वो तो यही दावत देगा कि अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानीशीन, इसी से लफ्ज रिब्बी भी है। क्या पता चला कि अपने से लोगों को नहीं जोड़ता बल्कि रब से जोड़ता है। अब देखिए इस लफ्ज में देखिएगा क्या खूबसूरती है, रा बाबा का रूट है, रब्बा या रब्बू, तरबियत, नशो नुमा पाना। एक होता है इल्म, इल्म आम है, हर एक को मिल जाता है, एक होती है तरबियत, तरबियत उससे अगला दर्जा है। जब इल्म के साथ तरबियत नहीं होती तो ऐसे ही है जैसे आपने किसी बच्चे के हाथ में छुरी पकड़ा दी और उसको चलानी नहीं आती। लोगों को इल्म का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, यहां बता दिया कि वो लोगों को खुद से नहीं बल्कि रब से जोड़ते हैं। इसी से लफ्ज रिब्बी भी है, क्रिश्चियन या ज्यूस के उलमा अपने आपको रिब्बी भी कहलाते थे, रिब्बी कहते हैं उस्ताद को, तरबियत करने वाला। जैसे लफ्ज है ना मुरब्बी, मुरब्बा खाया कभी, उसी से लफ्ज मुरब्बी, वो और चीज है लेकिन मुरब्बी के तरबियत करने वाला। और हर उस्ताद का ये फर्ज बनता है कि वो मुरब्बी भी हो, हर दीनदार का हदफ होना चाहिए कि वो लोगों की तरबियत करे। अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने एक पैगाम तो ये दिया कि तुम रब के बंदे बन जाओ, रिब्बी बन जाओ, रब तुम ऐसे बन जाओ जिसको देखकर रब याद है। अब ये कौन होते हैं इस पे बाद में बात करते हैं थोड़ी सी, लेकिन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब, इस वजह से कि तुम लोगों को किताब की तालीम देते हो, नोट करें तालीम देने वालों की बात है, किताब की तालीम देने वालों को लोगों को खुद से नहीं जोड़ना चाहिए कि हमारे हुक्के सीधे करो, हमारे पांव दबाओ, हमारे गुन गाओ, بلکہ کیا سیدھا کو جا خون ربانی ہے، تمہیں مجھ سے پیار ہے، اس پیار کو اللہ کے پیار میں بدلو، تم مجھے جنت میں دیکھنا چاہتے ہو، تم جا کے جنت والے کام کرو. یاد ہے آپ کو صحابہ میں سے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا، ربی نام تھا کچھ ان کے نام میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی مرافقت مل جائے. کہا واقعی ایسے ہی ہے، تو جاؤ پھر. فائنی علی کثرت سجود، میں دعا کروں گا اور تم کثرت سجود یعنی نفلوں سے میری مدد کرو. کیا پتہ چلا کہ دین کی بات کرنے والوں کو لوگوں کو اپنا قرب نہیں دینا چاہیے. دیکھیے ایک فطری قرب ہوتا ہے، وہ تو ماں بچے کا بھی ہے، وہ تو بھائی بہن کا بھی ہے. استاد شاگرد کے اندر ایک اچھا تعلق ہو سکتا ہے، جیسے استاد کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے، شاگرد کے لیے اس کے لیے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. یہ تب پتہ چلتا ہے جب خود استاد بنتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ماں باپ کو بچوں سے اور بچوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. لیکن بچپن میں ہر بچہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے میرے سے زیادہ دوسرے سے، آپ کو ایسی ہے نا، میرے سے سب سے کم ہو رہی ہے محبت. پھر جب آپ خود ماں باپ بنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، ماں باپ کو بڑا ہم سے پیار تھا. ایگزیکٹلی یہی چیز استاد اور شاگرد کی. تو کبھی کسی استاد کی کوئی بات بری لگے یا چبھے نہ، تو کہیں کہ یہ بات مجھے آج سے کوئی 10-15 سال بعد سمجھ آنی ہے جب میں خود اس درجے پہ آ جاؤں گا. تو اللہ سے جوڑنے کا فائدہ، اپنے سے جوڑیں گے تو کیا فائدہ. مجھے اگر کوئی ایسا میسج آ جائے میں تو واللہ ہی اس کا جواب بھی نہیں دیتی. کئی دفعہ کئی مطلب ایسے ہوتے ہیں، چند 10-15% اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ، جب فون اٹھا ان کے میسج، کبھی دل کبھی ہاتھ، ان کی تربیت کی جاتی ہے لیکن میں تو جواب ہی نہیں دیتی ان کا. کوئی دینا ہو تو اس میں ہڈن میسج، کوئی آیت، کوئی دعا، کوئی ایسی سلائڈ کہ آپ اللہ سے محبت کریں. اس لیے کہ انسان کمزور ہے، اور انسان کو دیکھ کے بھٹکیں گے تو آگ میں جائیں گے. یہ یہود کیسے بھٹکے، نصارہ کیسے بھٹکے، کفارہ مسیح کیا ہے، یہ جو آج صبح پڑھ کے آئی ہوں اور ربیع الاول کا وہ آرٹیکل جو کسی نے بھیجا ہوا تھا آپس میں، تو اس میں انہوں نے کہا دیکھو دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو، ہے نا یہ قرآن میں. تو کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جو نعمت دی اس کا اظہار کرو. اب یہ آیت موجود ہے، آپ جا کے پڑھیں سورۃ الدحیٰ کی آخری آیتیں. کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی سے بڑی نعمت کون سی ہے. تو جب اللہ کے نبی کی نعمت ہے تو تمہارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم اس کی سیلیبریشن کرتے ہو نا. تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نبی کی بھی برتھ ڈے مناؤ، کیونکہ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں دنیا میں. مجھے بتائیے ود دو ہاتھ سے لے کے اس آیت کے اینڈ تک کیا ربط بنا، ایسے توڑ کے ادھر سے ناک موڑ کے پیچھے آگے لگا کے اپنی مرضی کا دین لوگ بناتے ہیں. اور جاہل لوگ جو کبھی ایسی مجلسوں میں آپ دیکھیں، واہ واہ اور سبحان اللہ سے نیچے بات ہی نہیں جاتی. ود دوہا کا ترجمہ میں نے خود، ایک خاتون تھی تو وہ ان کے مجلس میں تھی، تو انہوں نے ود دوہا کا ترجمہ کیا کیا، تیری کالی زلفوں کی قسم جب کھل جائے. آپ بھی گواہ اس بات کی، آپ پتہ نہیں اس وقت تھی کہ نہیں. ود دوہا کا ترجمہ کیا، دوہا کے وقت کی قسم، سورہ ود دوہا واللیلی اذا سجا. وہ سسٹر کیا ترجمہ کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی زلفوں کی، رات کو انہوں نے آپ کی کالی زلفیں بنا دیا اور دوہا کو آپ کے چاند جیسے مکھڑے کی قسم. اب مجھے بتائیں یہ ترجمے جب لوگ پڑھیں گے تو وہ آپ کو مجھے تو جاہل ہی کہیں گے نا، کہیں گے یہ تو نبی کا نام ہی نہیں لیتے. یہ نقصان ہوتا ہے جب آرٹیفیشل اور مصنوعی ذائقے منہ کو لگ جاتے ہیں نا، تو اصلی کھرا دودھ بھی نہیں اچھا لگتا، پھر بچے بھی وہ فزی ڈرنک ہی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم خود بھی تو اس کو پڑھتے ہو. دو تین باتیں اس ایک آیت میں، بات واضح ہو کہ مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا اس کا، کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم اور تعلم کا تقاضا کیا ہے، کہ دین کا سیکھنا سکھانا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، حدیث ہو یا فقہ ہو، اس کا درس و تدریس اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والا بنا دیں. اس کا نہ تو یہ مطلب ہو کہ لوگوں سے جوڑا جائے، ان سے نذرانے وصول کیے جائیں اور ان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، سجدے کرائے جائے. ایسی ایسی آپ نے دیکھی ہوں گی کہانیاں، انسان کو سامنے بٹھا کے آ کے لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یوں ایسے جیسے کتوں کو پچکارتے ہیں کر کے جاؤ بگلا آ جائے. دنیا میں آج کتنا شرک ہے، دین کے نام پہ شرک سب سے خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو لفظ تدرسون ہے، درسا کہتے ہیں نشان چھوڑنا، یہ جو آپ اور میں درس و تدریس کرتے ہیں نا، اس میں بھی یہ لفظ ہے. درسا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، کوئی چیز پرانی ہوئی اور اس کا نشان مٹ گیا. آپ قرآن خانی میں سے ہو کر آتے ہیں نا تو دل پہ کوئی نشان نہیں چھٹتا، کیونکہ اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی جو بات آپ نے کہی بھی تھی، ٹھیک ہے. आप मिलाद से होकर आए, दिल पे कोई असर नहीं, पर आप 1 घंटे का दर्स सुन के आते हैं, दिल पे कितना असर रहता है। एक आधा दिन तो असर रहता ही है ना, कम से कम आप बैठे हुए तो असर है ना। ये लफ्ज़ है दरअसा, यानी यहाँ कोई स्याही गिरी, मैंने साफ किया लेकिन उसका निशान रह गया, ये लफ्ज़ होता है दरअसा। और जब दरअसा तदरीस बाब तफील में बदलता है ना, तो ये हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा पढ़ाना, ये जो आप इस वक्त कर रहे हैं। दौरे कुरान में तो हमने 3 दिन में 3 पारे कर लिए थे, यहाँ ऑलमोस्ट हमें 2-2.5 महीने हो गए हैं इस पारे तक पहुंचने में, फर्क है ना। ये मुराद है, थोड़ा थोड़ा दें तो उसमें असर ज्यादा होता है। फिर इसी तरह से उस रास्ते को जिस पर बहुत सारे लोग आते हैं ना, अरबों में आप देखिए कि ऐसी सड़कें तो नहीं होती थी जो हमारी हैं, तो वो रास्ता जो लोगों की कसरत आमदोरफ्त की वजह से दब गया हो, मिट्टी बैठ जाती है, रेत बैठ जाती है, उसको तरीकुन मदरूस कहते हैं। इसी तरह दरअसल खिंता तो कहते हैं गेहूं को जमीन में बो देना, जमीन में डालते हैं ताकि उसमें से फिर ऊपर से उसके फल, फिर बाज दफा जो उसकी सिट्टे होते हैं ना उसको जमीन पे डाल देते हैं, पानी जगह है जहाँ खुश, तो उसके ऊपर लोग चलने लगते हैं, वही लफ्ज इसके अंदर आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ बता दिया कि जब तुम पढ़ते पढ़ाते हो तो तुम्हारे दिल के अंदर इस कलाम से अल्लाह की मोहब्बत आनी चाहिए, गौर व फिक्र हो, और कायनात पे गौर व फिक्र करते कराते तुम अल्लाह तक पहुंच जाओ। खुलासा क्या हुआ इस एक आयत का, कि तालीम का मकसद लोगों को इंसानों का गुलाम नहीं रब का गुलाम बनाना है, लोगों का बंदा नहीं रब का बंदा बनाना है। इसकी शाने नजूल में एक वाकया सुन लीजिए, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, उलमा यहूद और नजरान के नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए। अब मौका वही है ना जो चल रहा पीछे से, और आपने इनको इस्लाम की दावत दी। तो अबू राफे कुर्जी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इबादत करें जिस तरह नसारा ईसा अलैहि सलाम की इबादत करते हैं। नोट करिए, आज भी कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं इनको तो जी मशहूर होने का शौक होगा, और ये तो चाहते हैं जी बस लोग इनकी बात माने और ये हुक्म देते रहे। ये भी एक जुल्म होता है, यानी बास लोग ना जानते देखते बूझते दीनदारों के ऊपर कमेंट डाल देते हैं, इनको ऐसा शौक है उनको ऐसा है। तो इन्होंने नौज़बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कहा, ये आप क्यों कहते हैं कि हर बात मानी जाए आपकी, क्या आप भी चाहते हैं कि जैसे नसारा की इबादत शुरू हो गई थी अब आपकी हो जाए। उस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर अल्लाह की इबादत करने का या इसका हुक्म देना, इससे हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, मुझे अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा और ना ही इसका हुक्म दिया है, उस पर यह आयत नाज़िल हुई थी। ये लामा सयूती की किताब में बात मौजूद है फी असबाबे नज़ूल में। तो आज बहुत कड़ी छुरी है, कल परसों को ऐसा वाकया हुआ, मैंने कहा मैंने छुट्टी नहीं करनी, मैंने जाना जरूर है चाहे मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं। मैं स्कूल आई थोड़ी सी देर, तो कोई एक सिस्टर थी वो देख रही थी, उनको पता था, तो मुझे कहती है टीचर बनना कोई आसान काम तो नहीं है, हम तो स्टूडेंट है फौरन छुट्टी कर लेते हैं। कहती आप क्यों आई हैं, आप आराम कर ले। मैंने कहा नहीं मुझे कोई नहीं पूछेगा, बट मैं खुद को नहीं छोड़ूंगी, फिर जो मैं नेकी का काम कर भी रही हूँ मुझे उसकी खुशी नहीं होनी, मुझे ये करना है, ये मेरे लिए रोल। और मैंने वो सब कुछ जो आमतौर पे 2-2.5 घंटे में करती हूँ, उस दिन आई मैं 1 घंटे के लिए, जो मेरा 5 मिनट का काम होता है, मैंने वो सारा कुछ करके दिखा लिया, स्टूडेंट से बातें भी कर ली, रिकैप भी करा लिया, उनके साथ थोड़ी ब्रेक भी, शक्ल दिखा दी उनको कि मैं इधर हूँ, जो मेरा काम होता है, कोई मुझे शाम को पढ़ाना नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी बात होती है, सिर्फ एक फीलिंग देती हूँ कि उनको अच्छा लगे। तो मैंने कहा कि ये मुझे करना था, अब देखना मेरे जो बरकत हो गई वो हुई, मैं जिंदगी में देख लेती हूँ उसकी बरकतें। तो कहेंगे वाकई बड़ा मुश्किल है, मैंने कहा ये तो आप जब बनेंगे आगे तो आपको समझ आएगी कि ढीला होना क्या मुश्किल है। मैं कहती हूँ जिसम कांप रहा हो अब कंबल लपेट के आके बैठ जाए, मैं स्टूडेंट्स को भी दिखाए क्या मैं कांप रही हूँ पर मैं आपके पास आ गई हूँ, कल उनको भी तो कभी तो याद आएंगी ना ये बातें। ये चीजें हम अपने माँ बाप की गैर महसूस तरीके से लेते हैं ना, ये चीजें समझ आती हैं लेकिन शुरू में नहीं समझ आती, जो जमा रहता है चलता रहता है, इस रास्ते पे चलता रहता है। फिर अगली बात देखिएगा कि इसमें एक और बात पता चलती है जो 3 चीजों की निस्बत है, यूत या हु के साथ आया है, मजहूल है, यानी आपको किताब का इल्म मिल रहा है, हिकमत मिल रही है, और कल नबूवत किसी को मिलती थी, ये सरासर अल्लाह का मामला। ये बड़ा अहम नुकता है, ये नोट करिएगा, आप में से मेरे में से किसी की ताकत नहीं है एक लफ्जी तर्जमा याद कर सके, एक आयत हिफ्ज कर सकें, हम किसी एक आयत की तफसीर समझ सकें, कोई एक रूट वर्ड हमें याद हो जाए, यहां तक है यूत या हु अल्लाह देता है, उससे मांगिए, रोए तड़पे क्या मिलता है, अल्लाह आपसे ही लेना है, देंगे तो आप देंगे, आपने औरों को दिए मुझे भी दें, अल्लाह ताला मेरा ज़हन कौन क्यों है, अल्लाह ताला मुझे बात समझ क्यों नहीं आती? आप बच्चों की तरह लाड करके देखें, अल्लाह सुबहान तला आपको देंगे और पूरी बात आके देंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इसी के बाद आप देखिए कि जो बात पीछे भी कल हदीस सुनाई थी ना आदि बिन हातिम की, कि जो बाप उलमा को रब बनाने की बात, वो हदीस इसमें भी आप कोट कर सकते हैं, क्योंकि उलमा के हलाल को हलाल और हराम को हराम करना, ये असल में उनको अल्लाह के बंदे बनाना है। एक बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कोटेशन आती है इस आयत की तफसीर में, एक मतलब फारिस के जिहाद के मौके पर रबी बिन आमिर, अल्लाह ने इनको बहुत दर्जे दिए थे, आए सफीरे रुस्तम के पास गए, यानी रुस्तम उस दौर का बादशाह था, ये उसके सफीर बनकर गए। बहरहाल फारिस के जिहाद के मौके पर हजरत रबी बिन आमिर बतौर सफीर रुस्तम के पास गए। रुस्तम बादशाह था उस वक्त का, ये सफीर या कासिद या एम्बेसिडर बन के उसके पास गए। रुस्तम अहले फारिस का साहिब इक्तदार था, यानी सुपर पावर का बादशाह था। रुस्तम ने कहा कि तुम लोग क्यों आए हो, यानी मुसलमानों को पूछा तुम हमारे मुल्क में क्यों आए हो। उन्होंने फरमाया, अब ये लिखिएगा, फरमाया कि अल्लाह ने हमको भेजा है ताकि बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाए, और जो मौजूदा अदियान है इनके जुल्म से बचाकर इस्लाम के अदल की तरफ ले जाए। इस आयत की तफसीर में आप इब्ने कसीर में पढ़ सकते हैं, यानी दुनिया की गुलामियां, दूसरी हुकूमतें बंदों की और हुकूमतों की गुलाम है, इस्लाम आता है तो लोग रब के बंदे हो जाते हैं, और जब ये आ जाती है सोच तो उसके बाद फिर कोई दुनिया में गलत बात किसी की नहीं मानता। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रब्बानी बना दे। एक पूरी सीरीज है हमारी, शायद आपकी नज़र से कभी गुजरी है, पूरी एक बुक है रब्बानी के नाम पे, इतना मैंने उसको एंजॉय किया था। छोटा सा एक टॉपिक, 14-13 मिनट, मैक्सिमम 15 भी नहीं होते होंगे, एक टॉपिक हम एक क्लास में करते रहे और वो पूरी बुक पढ़ी गई। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पे भी वो कुछ सीरीज में कभी चला है ना, इतना वो स्पिरिचुअल है कि किसी नए बंदे को आपने दीन की, इस्लाम की मोहब्बत देनी है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसमें ये सारे बातें रब्बानी की, कि रब्बानी कैसे बनते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि पहचान क्या है, क्या रब्बानी का कोई खास वजह कता होता है? पगड़ी ऊपर, ऑरेंज कलर का कुर्ता, गले में मनकों की माला, हमारे दिन में तो ऐसे ही आता है ना, कोई रब्बी बन जाए, अल्लाह वाला बन जाए, तो हमारी नजर में जाहिरी चीजें आती हैं। तो नोट कीजिएगा, रिब्बी की पहचान क्या है? नंबर एक, रिब्बी की तालीम की पहचान क्या है, या रब्बानी तालीम की पहचान यह है कि अल्लाह ताला के बंदों को उससे मिलाए, जिसकी बात सुन के आपको अल्लाह से प्यार हो जाए ना, वो रिब्बी है। दूसरी बात, वो तालीम लोगों के अंदर अल्लाह ताला के खौफ और मोहब्बत के जज्बात पैदा करे। रिब्बी वो नहीं है जो आपको अल्लाह से बेखौफ ही कर दे, कुछ नहीं होता सब बख्शे जाओगे, और वो भी नहीं है जो वो इतना डरा दे कि जन्नत में किसी ने नहीं जाना तो बस फिर दुनिया में मौज कर लो। नहीं, जन्नत की रग़बत जहन्नुम का खौफ दिलाए, अल्लाह की मोहब्बत, और वो भी हो। फिर इसी तरह से रब्बानी तालीम कौन सी होती है जिसमें शख्सियत परस्ती नहीं होती, खुदा परस्ती के अलावा किसी की तरफ रुख नहीं होता, इंसानी जज्बात का मरकज गैर अल्लाह को बनाना रब्बानियत के खिलाफ है। अल्लाह के नबी की एक बड़ी प्यारी दुआ है, वो आप और मैं मिलके मांगते हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे अपनी फिक्र लग जाती है कि ज़ाहिर है अल्लाह ने पढ़ने पढ़ाने का काम दिया है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कहीं हम ना ही नायतों की पकड़ में आ जाएं कि हम सारा वक्त लोगों को अपनी ज़ात से जोड़ते रहें। अगर अपनी भी कोई बात सुनाएं तो उसका मकसद ये हो कि तुम भी कर लोगों काम, ये ना हो कि अब तुम हमारा पल्लू पकड़ लो और कहो कि आपके पीछे हम जाएंगे। अगर कोई ऐसा जुमला बोल दे, सर से पांव तक आपके अंदर आग लग जानी चाहिए कि तुम्हें पता है मैंने जाना, मेरे भरोसे पे जाना है तो फिर तुम जहन्नुम में जाओगे। कब भी लोगों को ऐसी झूठी तसल्लियां ना करना, पीर साहब वहां जाके भूल ना जाना, हमारी मदद कर देना, भाई पीर साहब अपनी करेंगे तो आपकी करेंगे ना। तो बहरहाल दुआ पढ़िए, आपने बहुत दफा पढ़ी भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफाउ व मिन कल्बिन ला यक्षा। तर्जमा तो आ गया होगा बापू, के अल्लाह हम पनाह मांगते हैं उस इल्म से जिससे नफा ना मिले, और ऐसे दिल से जो आपसे ना डरे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6906 नंबर की, कसरत से इस दुआ को पढ़ा करें, और अल्लाह ताला हमें हकीकत में ऐसा ही इल्म लेने वाला बनाए, हम लोगों का वक्त जाया करने वाले ना बन जाएं और ना अपना जाया करें। और क्या नहीं करते रिब्बी? अगली आयत पे देखते हैं। एक तो ये बात समझ आ गई कि वो लोग अपने से नहीं जोड़ते, अल्लाह से जोड़ते हैं। अब क्या नहीं करते रब्बानी? आयत 80, वला या मुरकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबी न अरबाबा, और ना कभी वो तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों को और अंबिया को रब बना लो। इधर किसकी तरफ इशारा है? कौन सी कौम थी कि जो फरिश्तों को रब बनाती थी या फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहती थी? मुशरिकी ने मक्का। तो लिखिए इस आयत में मुशरिकी ने मक्का की तरफ इशारा है कि पीछे नसारा ने जैसे हजरत ईसा को रब बना लिया, इसी तरह मुशरिकी ने मक्का ने फरिश्तों को जो अल्लाह की बेटियां बनाया और अल्लाह ताला के नामों पर लात मनात उज्जा जैसी मूर्तियां बनाई, ये भी जायज नहीं है। दोनों के ऊपर इकट्ठा कमेंट है, आया मुरा कुंबिल कुफरी, तो क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? जरा अंदाज को महसूस कीजिए, कोई अल्लाह वाला तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? बाद इज़न तुम मुस्लिमून, इसके बाद के तुम मुसलमान हो चुके हो, यानी इतनी शिरकिया तालीमात देगा कोई तुम्हें कि तुम अल्लाह के बंदे बनने की बजाय कुछ और पीछे हो जाओ? तो ये नहीं हो सकता। यहां तक बात का खुलासा क्या निकला कि वो तालीमात जो हों तो मजहब के नाम पे, पर उससे नंबर एक शख्सियत परस्ती फैल रही हो, नंबर दो उसकी आड़ में शिरक हो रहा हो, तो उसको आप दीन की तालीमात नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं कि जो ढके छुपे लोगों को असल दीन से दूर कर देती हैं। अंदाज कितना खूबसूरत है, या मुरकु, जैसे आप कहते हैं क्या मैं तुम्हें ये हुक्म दूंगी, क्या तुम्हें मुझसे ये उम्मीद है कि ऐसा होगा वो होगा। और आज भी इसी क्राइटेरियन पे हर दीनदार को देख लें, अगर आप किसी की बात सुन के अल्लाह से जुड़ते हैं, अल्लाह की बात को समझते हैं, तो बस समझ लीजिएगा कि वही बात है जिसकी तरफ आपको माइल किया जा रहा है। ये जो आखिरी आयत में अरबाब आने ना, ये रब की जमा है, इसके मानी सैयद भी हैं और माबूद भी है। फरिश्तों और नबियों को रब बनाने से क्या मुराद है? सवाल जवाब, नबियों और फरिश्तों को अल्लाह वाली सिफात का हामिल समझना, इनको नफा नुकसान का मालिक समझना, इनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझना, और इस कायनात का निजाम चलाने में इनके हिस्से को तस्लीम करना। फिर इसे एक और बात भी पता चलती है कि वो तुम्हें ना तो अपनी जात की इबादत का हुक्म देगा और ना किसी भी मखलूक की इबादत का हुक्म देगा, ख्वाह वो फरिश्ते हो या अंबिया हो। और ये जो लफ्ज ना आया मोरकुम, तो ये सवाल उठाया जा रहा, इस्तफहाम है, लेकिन इस्तफहाम बराए इनकार। जैसे हम कभी कभी सवाल करते हैं मुराद क्या होता है, कैसा नहीं कहते, क्या मैंने तुमको ये कहा था, तो इससे बंदा समझ आता है नहीं 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 आपने नहीं कहा था, राइट? तो इसको कहते हैं इस्तफहाम। इस्तफहाम है क्वेश्चनिंग, सवाल खड़ा करना, देखने में लग रहा है कि आप कुछ पूछ रहे हैं लेकिन असल में आप उसको डांट रहे हैं। चलिए अगली आयत, अब खूबसूरत आयत, ये है वादा अलस्त के मुकाबले पे, या वादा अलस्त की तरह, जिसमें अल्लाह सुबहान तआला की खालकियत और उसको रब बनाने का हुक्म था, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत को मानने का हुक्म था। आइए थोड़ा सा जरा इसको पढ़ के साथ साथ फिर लेते हैं, बहुत खूबसूरत आयत, और इस एक आयत को अगर आप समझ गए ना, तो पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ मजाहब वाले हैं उनको आज क्या करना चाहिए, इसका जवाब देना भी आपको आ जाएगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु, आयत नंबर क्या है बोले, 81, आयत 81, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन, और याद करो जबकि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से एक अहद लिया था, क्या कहा था, लमा आतई तुकुम मिन किताब वल हिकमती, जब कभी मैं दे दू तुमको किताब और हिकमत। यहां नोट कीजिए, खुद नहीं मिलता अल्लाह देता है, जिस तरह बाकी चीजें वह भी होती है ना, इस तरह नबूवत और किताब भी वह भी है, अल्लाह अता फरमाते हैं, यानी अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं जब कभी मैं तुमको वो किताब दे दूं और हिकमत दे दूं, सुम्मा जाउकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फिर आ जाए तुम्हारे पास वो रसूल जो तस्दीक करता है उसकी जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात की बातों की तस्दीक करता है, लतुमिनुन्नबिही, पहली बात मान लिख लीजिए, अलबत्ता तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे, दूसरी बात वला तंसुरुन्नहु, और उसकी मदद भी करोगे। ये है वो आयत जिसकी रोशनी में हर दौर के नबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी, और ये है वो आयत जिसकी रोशनी में हर नबी ने अपनी उम्मत को ये बात कही थी, कुछ किताबों के जरिए कही थी, कि जब तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम उनको मानोगे। और ये है वो आयत जिसको मानकर आज के यहूद और नसारा को अशहदु अन्न मुहम्मद और रसूलुल्लाह कहना लाजमी है। बात समझे? अगर यहां हम नबी से मुराद या रसूल से मुराद सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लें, एक मानी जो बिल्कुल ठीक मानी है, और नबीजीन लफ्ज नबी की जमा है, नबा खबर को भी कहते हैं, बुलंदी को भी कहते हैं, पीछे इस पे हमने बात कर ली है अक्सर कि नबी जो होते हैं वो दूर की खबरें भी देते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी देते हैं। लेकिन अगर आप इस एक आयत पे गौर करें तो पहले तो दिल से शुक्र के जज्बे फूटेंगे कि आज मैं और आप नबी सल्लम को मानने वालों में। कोई भी दुनिया का मजहब है ना, कोई भी नबी, अगर 1,24,000 भी आए थे या 313 रसूल भी थे, हर एक ने अपनी उम्मत को यही कहा था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो तुम उनको मानोगे। आपको वो वाकया याद होगा कि हजरत उमर के हाथ में तौरात का एक सफ़ा देकर नबी सल्लम गुस्से में आए थे, तो उस वक्त आपने क्या कहा था? ए उमर, आज अगर वो मूसा भी आ जाए जिन पर ये तौरात उतरी थी और लोग उनके पीछे चल पड़ जाएं तो गुमराह हो जाएंगे। मुराद ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब किसी की नबुव्वत रिसालत नहीं चलेगी। अब यहां फिर एक जुमला बोलती हूं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने पिछले रसूलों और नबियों की शरीयतों को मनसूख कर दिया, इतनी बात वाज़े, तो फिर उस नबी की हदीस के मुकाबले में किसी उम्मती का कौल कैसे चल सकता है, किसी इमाम का फतवा कैसे चल सकता है, किसी मुफ्ती की बात कैसे चल सकती है? इसी कायद ने आपको मुझे काल अल्लाह व काल रसूल पे जोड़ दिया। पिछले तो नबी थे, रसूल थे, चले रसूल तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, उनकी बातें खत्म, तौरात वैलिड नहीं रही, एक्सपायरेशन हो गई, इंजील की हो गई, जबूर हो गई, कुरान आ गया, तो आज आप उसी नबी की हदीस के मुकाबले में इंसानी किताबें पेश करें, उसी के क्वाल और उसी के अफवाल को पेश करें और हदीस को झुटला दें, तो मान लीजिए फिर वही पीछे बात है, कून और रब्बानी जीन, वो नहीं बात हुई, वो फिर शख्सियत परस्ती होगी, फला इमाम से मिलो, उनके मुकल्लद बनो, उनके पीछे चलो, बेसोचे समझे करो, तो पता क्या चला कि दीन पे किसी की जारादारी नहीं है, तासुब नहीं कायम करना चाहिए। या ये भी समझ लीजिए कि नबी सल्लम से पहले हर नबी से यहद लिया गया, लेकिन गौर से सुनिएगा, उम्मते मुस्लिमा से ऐसा कोई वादा नहीं लिया गया, जो किस बात की दलील है? खातिमुन नबी जीन की। ये आयत नबी सल्लम के आखिरी नबी होने की भी दलील है कि आप आखिरी नबी थे, इसीलिए अल्लाह ने आपकी उम्मत से ऐसी कोई बात नहीं ली, क्योंकि आपके बाद कोई नबी आना ही नहीं है। सूरत अल अहज़ाब में डिटेल से ये बात आ जाएगी। और दूसरी बात नोट करें, सिर्फ लतू में नुन्ना नहीं है, ईमान नहीं लाना सिर्फ, बल्कि वलतंसुरुन्नहु, मदद, नबियों पर ईमान लाकर के उसकी मदद भी करनी चाहिए। इस पे एक बुक है, रहमतुल आलमीन के हकूक, ये तफीम व सुन्नत सीरीज जो आपके इस बुक कोर्स में भी बुक्स शामिल है, उसी की एक बुक है, 8 या 9 हकूक, बड़ी डिटेल से पढ़े थे, बड़ी खूबसूरत किताब है। मेरे ख्याल में रबीउल अव्वल में किसी को गिफ्ट देना हो तो ये किताब बेहतरीन है। इसको पढ़ सुनकर कई लोग मानते हैं, अच्छा जी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, कि उसको किए बगैर तो मुसलमान नहीं है, राइट? तो ये आयत बहुत अहम है, और इसी के मुताबिक फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब जब दोबारा दुनिया में आएंगे, हमने 2-3 दिन पहले भी पढ़ा है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे, कुरान की तबलीग करेंगे। और हजरत ईसा की बातों में आपने पढ़ा था ना, युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा वत्तौरात वल इंजील, तो वही बात अब मौजूद है। और इससे पता चलता है क्यामत तक अब कोई नबी नहीं आएंगे, हजरत ईसा आएंगे मगर वो मुत्तबे होंगे, मतबू नहीं होंगे, शरीयत मोहम्मदिया की पैरवी करेंगे। आखिरी बात करके आगे चलती हूँ कि वाला तन सुरुन्ना हो से किस किस्म की मदद मुराद थी नबी की? उसके घर कपड़े धोने चल जाओ, उसके खाने पकाओ? नहीं, नबी के मिशन में उनका साथ दो। हिजरत करने को करे तो हिजरत करो, कुर्बानी मांगे कुर्बानी दो, माल का तकाजा करे माल दे दो, तासुब नहीं बरतना, उनकी बात के आगे अपनी बात नहीं करनी। और इस पे पूरी सूरह हुजरात है, नबी के हकूक जो होते हैं ना उसको पढ़ना है तो सूरह हुजरात का हवाला नोट कर लें। हक की मुखालफत नहीं करनी, उसके झंडे तले जमना है। अब ये बात बयान करके आगे से फौरन पूछा, काला, फरमाया, पूछा, अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो, कन्फेस करते हो? वखस तुम जालिको मिस्री, और इस पर मेरी डाली भी जिम्मेदारी को कबूल करते हो? यानी ये वादा दिया, फिर उसके बाद साथ ही पूछ लिया कि बताओ क्या इस बात को मानते हो? जैसे आप किसी से कौल इकरार लेते हैं तो फिर आप उसके बाद बात करते हैं ना, ये जो लफ्ज है ना मीसाक, वसूक से, उस अहद को कहते हैं जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाए। पुख्ता बांधना, पीछे बताया दो तीन बार, मिसाक रस्सी को भी कहते हैं, औसाका हो उसने उसको बांध दिया। लेकिन मिसाक वो अहद जिसमें अल्लाह का नाम हो, कब बताओ कि इस अहद को पूरा करोगे और इन सारी बातों को मानोगे और इकरार करते हो। इकरार का लफ्ज कहाँ से होगा भला? कर्रा से, काफ रारा, जम जाना, ठहर जाना। तो इकरार क्या होता है? बात कह के जम जाओ, इंग्लिश में कहते हैं मैन ऑफ दी वर्ड्स बनो, अपने कहे को खुद निभाओ, खुद सोचो तुमने क्या कहा है अपने आप से, वो मान लो बस, दूसरों से मत कहो कि तुम्हें क्या बताएं, तुम अपने आप से कहो और जो कहो फिर उस पे जम जाओ। इसी तरह से अल करारतु नशेबी जमीन को कहते हैं, भला क्यों? जिधर से भी पानी जाएगा वहां जाके खड़ा हो जाएगा, जैसे बारिश के बाद थोड़ी थोड़ी जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, इसी से फिर कुर्रतुल आइन भी है, ठंडक, ठंडी होके चीज जम जाती है ना। तो फरमाया बताओ क्या तुम इसका इकरार करते हो? कहा बिल्कुल करते हैं, इकरार भी करते हो और उसके बदअखज तुम अला जालिको मिस्री। ये इसर लफ्ज नया है, हमजा स्वाद रहा। इसर वैसे तुम बोझ को कहते हैं ना, कहाँ पढ़ा था आपने पहले, कहीं पढ़ा? रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन। तो इसर कहते हैं किसी चीज को बांध देना, जबरदस्ती रोक देना। अल आसिरतु छोटी सी रस्सी को कहते हैं जिससे खेमे का निचला हिस्सा बांधा जाता है, रस्सियां लगाई जाती है ना टेंट्स बांधते हुए, उसी की तरफ इशारा है। और अल इसर पक्का अहद जिससे इंसान बंधा हो। फिर इसी से इसका मानी बोझ क्यों बनता है भाई? क्योंकि हर अहद एक बोझ है, हर कमिटमेंट एक बोझ है, मैंने कहा है मुझे निभाना पड़ेगा। ठीक है, आगे सूरह आराफ में भी हम इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। फरमाया तुमसे इस पर मैं एक वादा लेता हूँ और बोझ डालता हूँ, बोलो मानते हो? क्या बोले? कालो अकररना काला फश खदुवाना माँ को मिन शाहिदीन, चलो तुम भी गवाह बनो तो मैं भी इस पर तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फौलाएका हुमुल फासिकून, फिर जो कोई इसके बाद पलट जाए तो वो यकीनन पूरे नाफरमान है। कौन कौन पलटा हुआ आज दुनिया का? आज हर वो शख्स जो खुद को मुसलमान नहीं कहता, बात समझे? देखिए दुनिया के आज जितने भी मजहब है ना, ये किसी भी नबी के बिगड़े हुए लोग हैं। हत्ता कि हिंदुइज्म जिसको आप पेगनिज्म कहते हैं ना, ये जो अपनी किताबों में नाम लेते हैं कुछ लोगों के जो इनके बड़े थे, वो भी हो सकता है उनमें बड़ों में कोई नबी हो, लेकिन ये उनकी बातों में खो गए, नबियों की बातें छोड़ दी। आप सिखिज्म को देखिए, गौतम बुद्ध का मजहब देख लीजिए, सिख मजहब वाले आप गुरु नानक की तरफ इशारा देते ना, हो सकता है वो किसी दौर के नबी हो। गुरु नानक की बात नहीं मैं कर रही, उनसे पीछे उनने क्या किया कि नबियों की बातें छोड़ दी, नबियों के पल्लू पकड़ लिए। आज उम्मत मुस्लिमा में जिन्होंने बुजुर्गों के पल्लू पकड़े हुए हैं ना, कल पल्लू हाथ में रह जाने, उन लोगों ने चले जाने आगे कि हमने तो कोई नहीं कहा था, अगर कहा था तो वो भी इनके साथ ही खड़े होंगे। सीधा सादा फ्लैट रिलीजन है, कुलु कौलन सदीदा, सीधी बात करो और जो मुंह फेरते फिर तुम नहीं बचा सकते, छोड़ दो, ऐसी बातों पर लोगों को नहीं पकड़ सकते। बस लोग कहते नहीं, नरम नरम ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें करो, लोग खुश रहे। तो किस बात पे खुश रहे? दीन को बदलने पे खुश है? फिर तो खुश तो वो फिर भी नहीं होंगे। याद रखिए, ना तो हद से बढ़ाएं किसी बात को दीन की, ना कम करें। जो हराम है वो हराम है, जो मकरूह है वो मकरूह है, जो हलाल है वो हलाल है। बगैर एग्जेजुरेशन के दीन को आगे रख दीजिए, फिर जिसके जो नसीब में होगा वो इसको मान जाएगा। और ये आयतें ही दलील बनी थी इस बात की कि नबी सल्लम के दौर के वो लोग जिन्होंने वाकई आपका जिक्र अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था, वो मुसलमान हो गए। अब्दुल्ला बिन सलाम और इसी तरह से कुछ और लोगों के नाम भी आप पढ़ते हैं। क्रिश्चियंस में आज भी जो लोग मुसलमान होते हैं उनको सब पता है। अच्छा, इस सारे अहद से पता क्या चलता है? कि सारे नबी एक ही मिशन के राही थे। आप अगर ये लिख लेना मिसाल कि सारे नबी ट्रेन की मुख्तलिफ बोगियों की तरह थे, पहली बोगी से लेकर सौवीं बोगी, ठीक है फासला तो बहुत है पर उतरती सब एक ही जगह, पटरी सबकी एक है, एक बोगी पटरी से उतरी तो सारी गिरेंगी, रुख सबका एक ही तरफ है। ये सब एक दूसरे पे तकिया लगाए हुए थे, ये सब अल्लाह की हिदायत के पाबंद थे। इससे पता चलता है दीन एक है, और इससे पता चलता है कि सारी इंसानियत को इसी दीन पर चलाएंगे, तब्दीली नहीं करेंगे। और इससे पता चलता है कामयाबी का जरिया जो कल था वही आज है। इससे पता चलता है कि आज के और कल के दौर के तकाजों में कोई फर्क नहीं है। और इससे पता चलता है कि नबियों के कुछ जाती मकासद नहीं होते थे दीन की बातों में, ना ख्वाहिशात होती थी, सरासर वो एक सिस्टम को फॉलो करते थे। आज की जुबान में एक लफ्ज बोलते हैं इसके लिए, फ्रेंचाइजेशन। समझ आता है क्या होता है? मैकडोनल्ड सारी दुनिया का एक जैसा, KFC सब जगह एक जैसे, ये फ्रेंचाइजेशन थी। दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, मुसलमान एक ही जैसे दिखे। देखिए जरा काफिरों को हाथ पांव पड़ते हैं कि नहीं। वो ना फर्क हो कि ये ईस्टर्न मुस्लिम, ये वेस्टर्न मुस्लिम, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये नॉन प्रैक्टिसिंग, ये लिबरल मुस्लिम, ये एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम, इन्होंने हमें बदनाम किया हुआ इन चीजों ने। फिर लोग कहते हैं जो कर रहा है वो ज्यादा ही हो गया, जो नहीं कर रहे वही ठीक है। और लोग अमल में उन लोगों को पकड़ते हैं जो बिल्कुल निकम्मे और फेल होने वाले दीनदार होंगे, कहते हैं देखो ये भी तो दीनदार है ना। और जिन लोगों ने पोजीशंस ली होंगी दीन पे, कहते हैं छोड़ो अब इनको क्या कहना,